ओम शांति। आज का टॉपिक है निवेश की अति उत्तम योजना दुआएं। तो सबसे पहले दुआएं मना क्या, निवेश किसको कहते हैं, उसके ऊपर कुछ चिंतन मुरली से लिखा है और कुछ अनुभव की बातें भी बीच बीच में बताएंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहला निवेश अर्थात क्या, निवेश किसको कहेंगे यहाँ बाबा की भाषा में। निवेश शब्द तो बाबा ने किसी मुरली में नहीं कहा, जिसको बाबा ने कहा जमा का खाता बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट बोला इंग्लिश में। तो उसको बचत करना, दुनिया में बचत करने की कई स्कीम निकलते हैं, कई बैंकों में अलग अलग फायदा बता के टेम्पटेशन देके हमारे इधर जमा करो तो आपको इतना दुगना करके देंगे, तिगना। बहुत सारे स्कीम निकलते हैं बीच बीच में, तो कई लोग उसमें एक दो को ठगते भी हैं, लेकिन यहाँ ऐसे कोई बात ठगने की नहीं है। बचत अलग और निवेश करने की जो पद्धति है, जो बचत है, जो कमाते हैं उसको पैसे को पैसे बढ़ाने के लिए युक्ति, वो बहुत दिमाग चाहिए उसके लिए बाहर दुनिया में पैसे को पैसे बढ़ाने के लिए। और उसके लिए तो यहाँ बाबा बहुत सूक्ष्म उसकी पद्धति बताते हैं और उसकी प्राप्ति भी अलग है। या हमारे अलौकिक भाषा में कहें तो उसको क्या कहेंगे, जमा का खाता बढ़ाओ, इसके ऊपर कई मुरलियां भी चली है। तो उस निवेश में एक दो को ठगते हैं और यहाँ ऐसा कोई रिस्क नहीं, कोई जितना भी जितना जैसा चाहे जब चाहे छोटा बड़ा निवेश कर सकते हैं और उसकी गारंटी है। वहां निवेश करने से कोई गारंटी भी नहीं होता, खुद ही खुद को ठगते हैं। तो यहाँ घाटा नहीं बल्कि फायदा ही फायदा है, वो भी कई गुना होके मिलता रहता है अभी भी और भविष्य में भी। यहाँ कोई भी कहीं पर भी अपना, जैसे बताया कि यहाँ पर भी अपना अकेले रहो या संगठन में रहो और अपना बाबा के लिए हम कुछ भी करके अपना भाग्य बना सकते हैं, वहां ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके बहुत कंडीशन होते हैं, बहुत झंझट होते हैं, वो सबसे नहीं होता है, सब निवेश नहीं कर सकते हैं, वो कुछ योग्यताएं चाहिए। यहाँ भी योग्यताएं चाहिए लेकिन कुछ नहीं, बाबा बाबा कहते रहो ये शब्द तो भी बाबा कहते हैं तो कुछ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, दुआएं अर्थात क्या, इसको पर्यायवाची शब्द में दुआ, दया, कृपा, आशीर्वाद और क्या कहेंगे इसको, शुभ भावना, शुभकामना। तो दुआओं का वास्तविक अर्थ क्या है, दुआएं यही आपने बताया, सदा और निरंतर सभी के लिए शुभ भावना और शुभकामना रखना। और दुनिया की भाषा में आशीर्वाद भी किसको मिलता है, आज्ञाकारी बन के, माँ बाप के आज्ञाकारी बनते हैं, उनकी सेवा करते हैं तो उनको आशीर्वाद मिलता है। तो गाड़ी के पीछे भी लिखा रहता है माँ बाप का आशीर्वाद, गीत भी है ना, ले लो माँ बाप की दुआएं तो क्या होगा, पाप की गठरी उतरेगी। तो यहाँ दुआएं जो दुनिया किसी का कल्याण हो, मंगल हो, उसके लिए की गई प्रार्थना का नाम है दुआ, उसको कहते हैं ना। तो उसका दुआएं, अच्छा फिर सबसे पहले तो दुआएं देना सहज है या दुआएं लेना सहज है, यहाँ दोनों में कमाई है,
मेहनत का काम
है। हाँ, बहुत मेहनत का काम, सूक्ष्म काम है बहुत, लेकिन इसका इसकी जो कला है ना, जिसको आ जाए, जैसे चिंतन का चस्का बोलते हैं, तो ये भी एक दुआएं देने की और दुआएं कला। एक माता जी थी सेवादारी में, वो सारा डाइनिंग टेबल रोज सफाई करते थे, बोला लेबर है ना, करते हैं आप क्यों कर रहे हैं, तो बोला नहीं मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे भी कुछ तरीका है, उनका सोच था, बहुत लोगों ने रोका उनको, नहीं रोक पाए। तो फिर आखिर एक ने पूछा आखिर क्यों करते हो आप इतना खुशी से बाबा के गीत लगा के, इससे अच्छा आप योग लगाओ, बाबा कमरे में जाके, ये काम तो दूसरा कोई कर सकता है, राजू कोई नहीं कर सकता है ना। तो बोलते हैं कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार से अपना अपना तरीका है निवेश करने का, वो समझती है कि इससे मुझे, यहाँ बैठ के चाय पियेंगे फॉरेनर्स तो खुश हो जाएंगे साफ सफाई देख के, ये भी अच्छी बात है। तो जैसे आपने बोला उसके लिए त्याग, तपस्या और सेवा करनी पड़ती, तभी जाके दुआ मिलेगी। दुआ की इतनी ताकत होती है दुआ में, जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं इसमें। बहुत जैसे बीमारी के लिए मांगते दुआ मांगते हैं, बीमार होने के लिए काम, कुछ सेवा करनी होती, बड़ा कार्य है तो उसके लिए भी योग बटी रखते हैं, तो क्या है? बाबा से दुआ तो नहीं कहेंगे, लेकिन दुआ मांगने से भी नहीं मिलती है तो कैसे मिलती है? सुख देने के कर्मों से, अच्छे कर्मों से हम दुआ अर्जित कर सकते हैं, ऐसी दुआ किसी मांगने से नहीं मिलती है। उदारता पूर्वक स्वाभाविक रीति से किसी दूसरे की भलाई करने का काम करते हैं तो उसको भी हम समझेंगे भाई इसके ऊपर कृपा है, आपकी कृपा दृष्टि है। कैसे हो? कहीं बोलते आपकी दया दृष्टि है, आपकी कृपा दृष्टि है। तो हरेक के प्रति सुभावना तो रहती है लेकिन उसकी गुणवत्ता कम ज्यादा हो सकती है समझ के अनुसार। तो सज्जनता पूर्वक किया हुआ ऐसे कार्य किसी की भलाई हो जाती है तो उसको क्या कहेंगे? दुआ, कृपा, आशीर्वाद जो भी है। तो भगवान को केवल भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, कृपा इसे नहीं मिलती, पहले उसको जानना पड़ेगा। उनकी कृपा भक्त पर कब हो सकती है? जब भगवान की कृपा भक्त पर कब होती है? जब मन बुद्धि से शरणागत होता है। प्रसन्न कब होता है? उसके मन पसंद काम करने से। वो कहता है मन बुद्धि मेरे को दे दो, मैं आपका मन मनमनावा हो जाए। अगर वह मन बुद्धि से समर्पण नहीं करता तो उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने कहा सबसे पहले साकार बाबा आते ही, ज्ञान में आते ही सबसे पहला काम क्या किया? पुरुषार्थ, सब तन मन धन स्थूल सूक्ष्म सब पहले स्वाहा कर दिया। मन भी, और मन भी सड़ा हुआ, तन भी बीमार, क्या क्या देते हो, क्या लेते हो? तो सब कुछ सूक्ष्म पहले बाबा ने, सबका सबसे पहला पुरुषार्थ बाबा का क्या रहा? कई लोग पूछते कहां से पुरुषार्थ शुरू करें, क्या करें? मेरे को याद आता है, हंसी आती है, उनको डायरेक्ट तो ये नहीं बता सकते हैं, वो करेंगे भी नहीं। तो ब्रह्मा बाबा क्या किया? सबसे पहले निश्चय होते ही सब कुछ स्थूल सूक्ष्म स्वाहा कर दिया। बाबा जैसे मर के जिए और हम मरने के लिए जी रहे हैं, अर्थात साकार बाबा संगमयुगी जीवन जो है जो व्यतीत किया वो मर करके जीने के लिए, और हम लोग संगमयुगी जीवन कैसे बिता रहे हैं? मरने के लिए जी रहे हैं, जीते जी मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जिस जीव पर शिव की कृपा होगी वो कैसा जीवन होगा, कैसा व्यतीत करेगा जीवन? सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। तो बाबा का, साकार बाबा का जीवन अभी भी संगम युग पर सत्युग से ज्यादा मानो उसका सुख अनुभव बाबा ने यहाँ किया। इसके लिए परोपकारी, विनयशील और सत्यवादी होना होगा, इसमें है मेहनत, ये मेन स्रोत है निवेश करने का, बाहर दुनिया में भी और यहाँ भी। इसका डेफिनेशन तो बहुत हो सकता है, तभी हमारे द्वारा कहे गए हम किसी को वचन कहते हैं तो वो सत्य हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, उसके लिए काम आते हैं। तो वो हमारे लिए तब वो उस हम जो कहेंगे वो कर पाएगा, और उससे जो दिल से दुआ निकलेगी ना वो हमारे लिए भी काम करेगा और उसके लिए भी काम करेगा, वो जमा के खाते में जमा हो जाएगा दोनों। तो लेकिन ये जो है आशीर्वाद का अर्थ भी लगभग उसका जैसे सुनाया, दया अर्थात करुणा, दया धर्म का मूल है। ये मूल क्या? पाप मूल अभिमान। इसलिए जब तक प्राण तन से न निकले तब तक दया नहीं छोड़नी है। दया का उल्टा करो क्या होता है? याद। तो याद बिना हमको चैन नहीं आना चाहिए संगम पर। निवेश माना जमा का खाता को बढ़ाओ, पर कैसे? इसके ऊपर बहुत सारी मुरलियां चली दादी के समय, इसकी जब रिवीजन का आया था, ये रिवीजन हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारी बाबा ने भी मुरलियां चलाई और बहुत पुरुषार्थ कराया था मधुबन वालों से, चार्ट भी बनाया था कैसे जमा करें। जैसे पैकेज दिया था प्यूरिटी का, उसमें से 5 संकल्प विशेष जमा के खाते में वो आता है, तो उसके लिए चार्ट भी लाया है, जिसको चाहिए जमा का खाता बढ़ा सकते हैं चार्ट लिख के। तो स्पार्क में इसकी छोटी सी पुस्तिका भी बनाई गई है जमा का खाता के ऊपर। इसके लिए साकार बाबा, साकार मुरलियों में कई बार कहा है, क्या कहा है उसके अभिवाणी में, जमा का खाता का अलग बताया, साकार मुरलियों में अलग बताया है। एक एक पाई, एक तन, जिसके पास धन ज्यादा है वो सेंटर बनाओ। अगर आप नहीं रेगुलर स्टूडेंट बन सकते हो तो आप कहीं सेंटर खोल के दो, बहनें वो आप क्लास कराएंगी, कोई कई आत्माएं आएगी वो पढ़ेगी तो उसका शेयर आपको मिलेगा, वो जमा हो जाएगा। इस प्रकार साकार मूल्य में बताया। और अव्यक्तवाणियों में बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म स्वयं के लिए, संकल्प से लेके श्वास तक पूरा तन मन धन, और एक भी सुबह से लेके शाम तक आपका व्यर्थ न जाए, तब जाके जमा होगा। और बाबा हमारे ऊपर कैसे दुआ करते हैं, मुरलियों के द्वारा। जब तक किसी को बाबा दुआ नहीं देते, मना आके दृष्टि देके मुरली नहीं चलाएंगे, बाबा को भी चैन नहीं आता शायद। लेकिन अभी तन ऐसा है तो थोड़ा सब सुना भी दिया, सब प्रकार की दया कितनी बार कर चुके हैं। बाबा की शिक्षाओं में मुख्य बातें यही होती है कि बच्चे साकार मूल्यों में क्या आता है, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो, कमाई करो, भाग्य बनाओ और बढ़ाओ, खूब मेहनत करो, तीव्र पुरुषार्थ करो, बुद्धि से काम लो, अशरीरी बनो, निरंतर मुझ बाप को याद करो। ये सारी रोज हम सुनते हैं, सदैव मनसा वाचा कर्म ना पवित्र हो, ऐसे नई नई पॉइंट्स रोज सुनते और सुनाते हैं। लेकिन पॉइंट्स पॉइंट बनने में मददगार बने, सिर्फ सुन के सुना के खुश हो जाते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं। तो जैसे आजकल निकले लिखो फेंको वाला पेन, यूज एंड थ्रो हो जाते हैं, रोज मिलता है पॉइंट भूल जाते हैं, फिर कल के लिए दूसरा पॉइंट, वही पॉइंट दूसरे रूप में आता है। लेकिन उसको स्थायी बनाने के लिए क्या किया जाए, स्थायी बनाएंगे तभी तो जमा होगा। तो स्थायी बनाने के लिए इसके अर्थ स्वरूप को बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, उसका स्वरूप का अनुभव करना पड़ेगा, तब जाके वो अनुभव में जब आएगा तो हमारे लिए भी वो दुआ का काम करेगा, और सामने हमको जो संबंध संपर्क में आएंगे, जिसकी भी सेवा करेंगे, तो उसके लिए भावना हमारी उसको पहुंचेगी, वो दुआ का काम करेगा। तो वो दोनों का मिलके हमारे जमा के खाते में निवेश होता रहेगा। अनुभव होना या करना, ये है दुआएं प्राप्त करना, ये पहली स्टेप है। अभी इसको बढ़ाना, अनुभवी बन औरों को अनुभवी बनाना, यह है दुआओं को बढ़ाते जाना। ये ऐसे कहते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं निवेश की अति उत्तम योजना। ये बहुत सूक्ष्म है। अभी इसमें अलग अलग योजनाओं के प्रकार हो सकते हैं, कैसे, जैसे कि स्मृति से स्मृति दिलाना एज इट इज। किसी को अभी एक भाई है ट्रॉमा में नीचे, 3 महीने का डेट बताओ आप मुरली रिवाइज करेगा, महावाक्य क्या है, प्रश्न उत्तर क्या है, धारणा सार क्या है, वरदान सब बताइए, डेट बताओ आप। सिर्फ हमको कंप्यूटर में देखना पड़ेगा या मुरली देखना पड़ेगा, तब जाके रोज सुनते हैं, पढ़ते तो भी ठीक से पढ़ना नहीं आता, तो कितना मेमोरी पावर है। स्मृति से स्मृति दिलाना ये भी एक प्रकार का, ये अच्छी बात है, फर्स्ट स्टेप है दुआएं लेने का। माना इसमें थोड़ी कमाई है, कमाई माना दुआएं है, और यानी थोड़ा कल्याण है। और दूसरा, उस स्मृति से स्थिति जो बनेगी, उस स्थिति से स्थिति बनाने की प्रेरणा देना, यह है थोड़ा उससे ज्यादा कमाई करना, माना ज्यादा दुआएं प्राप्त करना और ज्यादा दुआएं देना। और उसके आगे की स्थिति क्या है, स्थिति से जो अवस्था बनेगी उससे जो अनुभव होगा, मुझे भी और सामने वालों को भी हम अनुभव कराएंगे, तो वो अवस्था से अवस्था बनाने की प्रेरणा देना, इसमें बहुत कमाई है। ये सब नहीं कर पाते, बहुत उसके लिए जमा का खाता बहुत चाहिए, तब जाके यहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसको दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं वरदानी बन वरदान दो, तो इसमें बहुत कल्याण समाया हुआ है। तो इस तरह से विश्व कल्याणकारी बनना मना बहुत कमाई व दुआएं जमा करना व निवेश करना। तो जो बाबा ने बताया शिक्षा है, कई प्रकार की शिक्षा हो सकती है, मैंने थोड़े से लिखे थे इसमें। तो बाबा की मुरलियों द्वारा स्व परिवर्तन करने से बाबा की ओम बाबा के मना हमारे बेहद परिवार से जो दुआएं मिलेगी ना, वो बहुत काम करेगी। अभी भी हम खुश रहेंगे, हल्के रहेंगे, और भविष्य में जो जमा होगा वो तो मिलेगा ही, बाहर वालों को भी मिलती है। तो वह आत्मा, ये आत्मा की बहुत बड़ी कमाई है, अंदर ही अंदर जमा होता रहता है। ऐसी दुआएं खुशी दिलाती है, अविनाशी खुशी। अंत में पैसे काम में नहीं आएंगे तो क्या काम आएगा, पैसे होके भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारा डिजिटल सिस्टम जो होगा अचानक समझो ठप हो गया तो क्या होगा। मनुष्य बाबा कली बाबा ने बोला, मनुष्य चाहते कुछ है, भगवान का प्लान कुछ है। भले हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं, कितना वो सक्सेस होगा वो तो हमारी तो सुभावना है, लेकिन भगवान का प्लान कुछ और ही, हम सब जानते हैं। फिर भी हमारे तो सुभावना, पर तो अंत में कुछ नहीं कर सकेंगे, तो उस समय खुशी गायब हो जाएगी। लेकिन अगर ये कमाई व दुआएं जिसने जितना निवेश करके रखी होगी, उस समय उस आपातकालीन के समय काम आएगा, परेशान नहीं होंगे, अशांत नहीं होंगे, वही हमारी खाना पूर्ति का होगा।
आपके कालीन दरवाजा खुलता है,
कौन सा आपातकालीन इमरजेंसी आई वेल के समय, ये सब हमारी जो अभी जो हम कमाई कर रहे हैं ना दुआ, हाँ अगर मन में संकल्प विकल्प की पीड़ा होगी अभी भी, तो सर्व के दुआओं के बदले बददुआएं मिली, और ऐसों को किसी से स्नेह भी नहीं मिलता, सहयोग भी नहीं मिलता, किसी का फैत भी नहीं रहता। ये कितनी बड़ी सजा है। बाबा की श्रीमत की अवज्ञा करना मना अपने को श्रापित करना, श्रीमत पर न चलना व पढ़ाई छोड़ देना एक ही बात है। इससे अपने ऊपर आपे ही दुआ के बदले बददुआ व अकृपा करते हैं। इसलिए सदैव श्रीमत से श्रेष्ठ कर्मों द्वारा ही दुआओं का स्टॉक जमा करते रहना है। सदैव एकर स्थिति रहना, ये दुआ है, ये बहुत बड़ी दुआ है। बाबा की श्रीमत का पालन करना अर्थात उसे अपने जीवन में लाना, ये है वरदान पाना व दुआई देना, दुआई लेना। हम बाबा के पास किस लिए आए? हम सब बाबा के किस लिए बने? दुआई लेने, यही तो काम करने। दुआई लेना मना, भक्ति मार्ग में क्या बोला था हमने बाबा को? सुमत दे भगवान, दया दृष्टि करना। तो अभी वो सब कर रहा है भर भर के मुरलियों के द्वारा। तो हमारी पालना ही दुआई है। अभी जो हम बैठे हैं यहाँ बाबा की पालना में ही बैठे हैं, तो ये दुआई है बाबा की। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे, इसलिए हिम्मत है। तो परसों के मुरली में क्या था? श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे, इसलिए हिम्मत है। तो क्या करो? श्रीमत पर चल करके हर पद में पद्मों की कमाई करते पद्मा पद्मपति बन सकते हैं। उसमें साकार मूल्य में तो परसों, अगर श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे, यह है पक्का, सबको मालूम है। लेकिन हिम्मत है तो आगे की लाइन लिखा बाबा ना, इसलिए हिम्मत है तो श्रीमत पर चलो। यहाँ लिखा मैंने पद्मों की कमाई कर सकते हैं हम, अर्थात बहुत कमाई यानी बहुत दुआएं प्राप्त हुआ निवेश कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा गोल्डन, तो क्या कहेंगे, डायमंड चांस है। बाबा और ब्राह्मण परिवार की दुआ उसे ही मिलती है जिसे, किसे मिलती है बाबा और परिवार की? जो बाबा का सच्चा योगी बच्चा है। विश्व भी उसका गुण गाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कोई तीखा अच्छा बुद्धिमान बच्चा हो तो ये, जैसे गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है, ये सिद्ध करके किसी को बता के समझा करके उसको कन्वे करके उसको अपने वर्ष का हक लेने के लिए निमित्त बने, तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी सेवा हो जाएगी। तो उससे जो दुआ मिलेगी, उससे जो खुशी होती है, उससे उसको देख बाबा भी खुश होते हैं। बाबा का खुश होना मना हमारे को दुआ मिलना, तो यही संगम की असली कमाई है। इस तरह की आंतरिक खुशी से और खजाने भी जमा कर सकते हैं, अपने आप हो जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी को निवेश करना हो, कई लोग सात पीढ़ी का सोचते हैं, कहानी भी है एक, अभी कल क्या होगा पता नहीं। तो यहाँ भी बहुत उछल आती है कभी कभी किसी को दान करने की, किसी को पुरुषार्थ करने की, किसी को सेवा करने की, लेकिन उसके लिए बाबा बताते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी को निवेश करना हो तो उन्हें सर्व गुणों, सर्व विशेषताओं, सर्व शक्तियों से संपन्न बन ऑलराउंडर सेवादारी बनना होगा, तभी हम नई दुनिया में क्या करते हैं, ज्यादा कमाई के लिए ज्यादा भ्रष्टाचार करना पड़ेगा और यहाँ ज्यादा श्रेष्टाचारी बनना पड़ेगा। जैसे बड़ी दादी जी और जगदीश भाई जी को हमने प्रैक्टिकली नजदीक से देखा है, अनुभव भी किया है, ये सब बातें जो बताई ऊपर वो उनमें सब मौजूद थी, इसलिए इतने दिन रात निरंतर सेवा करते रहते थे और कराते भी रहते थे, खुद भी शांति नहीं रहते थे, दूसरों को भी शांति नहीं मना, बाबा की ऐसे दादी जी बोलते थे। इतना प्लानिंग लेके आते थे दिल्ली से, जगदीश भाई आया मना सब रेडी हो जाओ मधुबन वाले, दादी बोलती। तो फिर सोन्नति भी साथ साथ करते थे और कराते भी थे, और साथ में शरीर का हिसाब किताब भी बड़े अच्छी तरह से चुक तो करके गए, ये भी देखा हमने। तो किसी भी व्यक्ति या प्रकृति को दुआएं देनी है तो विशाल दिल चाहिए। दुआएं शब्द में ही सारा जीवन का सहारा आ जाता है। दूसरा, दुआएं लेते समय हमारे मन में क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हम किसी से दुआएं लेते हैं तो उस समय हमारे को क्या होना चाहिए? कई गिल्टी महसूस करते हैं, हम इसको क्यों, इसके ऐसे आशीर्वाद तो बड़े देते हैं ना, लेकिन इनसे क्यों दुआ लें? अगर हमारे से ज्यादा पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़ा श्रीमत से हमारे से ज्यादा चले, तो उनसे दुआ लेने में क्या है, दे सकते हो। तो उसमें मंदर अंदर में कोई लेने की भावना नहीं होना चाहिए, मैं इससे क्यों लूं। फिर देते समय कौन सा संकल्प नहीं रहना चाहिए। मैं कोई बड़ा कार्य कर रहा हूँ, अच्छा कार्य कर रहा हूँ, अंदर सूक्ष्म में रहता है, तो मेरे जैसी दुआ कोई दे नहीं सकता, ये मन में नहीं होना चाहिए। देते समय और लेते समय गिल्टी महसूस न करें, जहां से अच्छी बात है लेने में क्या हर्ज है। इस प्रकार का व्यर्थ मिथ्या अहम भाव भी न हो, नहीं तो न किसी को इससे किसी को कुछ भी जमा नहीं होगा। क्या हाँ नहीं, आजकल आ रहा है, मिलावट का जमाना है ना, अभी काला बाजारी का जमाना है, कम है, बहुत ऊंच श्रेणी की बात कर रहे हैं, थोड़ा मिलावट हो सकता है। अहम बाबा कितनी बार याद दिलाते हैं, मैं और मेरा का भाव सूक्ष्म में आता है, वो आया माना गड़बड़। तो इससे किसी को कुछ दुआ दे सकते हैं ना ले सकते, किसी का कुछ भी जमा नहीं होगा। नारायणी नशे के सिवा बाकी सब नशे में नुकसान है। दुआएं दे मना शुभ भावना शुभकामना रखना, ये तो है ही होलसेल में, तो किसी को मना जैसे आवश्यकता के समय हम उसको मदद किया, दुआएं यही मदद करना उसे दिल से। जैसे अभी मेरे को, मैं सेवंथ पास हो गया था, फर्स्ट मेरा ही बताता हूँ कि एक मेरा हॉस्टल में नंबर लगाने के लिए बहुत सारा घूमा, कहीं लगा नहीं, तो निराश होकर बैठा था मैं। तो बोला एक अचानक सुपरिटेंडेंट को, किसी के मेरे दोस्त के पिताजी के फ्रेंड निकले और उन्होंने सहज लगा दिया, तो अभी तक हमारे दिल से दुआ निकलती है, याद रहता है, ये भी है इस प्रकार से। और यहाँ हमारे ब्राह्मण परिवार में कैसे उसका, तो दादियों का हम ले सकते हैं, ऐसे दृष्टि देते हैं, दादियों की तो बात अलग है, हमारे आपस में कोई पॉइंट ऐसा आपसे सुनते हैं और हमारे को काम आता है तो दिल से दुआ निकलती है। लेना माना क्या, तो लेनी की लेना जैसे हाँ लेते हाँ होता है वो, जैसे अभी होता है ये भी कभी हाँ, लेकिन उसमें भी सूक्ष्म वो से क्यों ले रहे हैं, अवॉइड करते हैं। नहीं अभी हम नहीं लेते, कई बार मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, ऑफिस में ऐसे थैंक यू बोलते रहते, क्या मतलब है भाई, अभी हमारे को श्रीमत के अनुसार सुख देने का श्रीमत है, अब उसके अलावा हम उस हाँ वो नहीं लेते, हम देते करते ही नहीं, मना हम करे उनका काम करेंगे नहीं तो दुआ मिलेगी नहीं, हम लेंगे नहीं, हम काम करेंगे ही नहीं, ये नहीं लेना होता है। अभी हमको मालूम है आया है किस व्यक्ति, तुरंत हम समझ जाते हैं क्या चाहिए उसको, कितना चाहिए। हाँ एक बार देंगे ना दूसरी बार आता, इसलिए पहले ही कैंसिल करो, ऐसी दुआ कोई काम की नहीं, इसलिए नहीं लो। वो तो अलग हो जाता है, अभी का जमाना अलग है, लेकिन नहीं तो कितना भी कुछ भी पुरुषार्थ करो, अगर इस नशे के अलावा दूसरा कोई नशा है अंदर सूक्ष्म मई और मेरा का भाव है, तो कितना भी कुछ पुरुषार्थ करो, सेवा करो, परंतु फिर भी वो खुशी वो सुख कोई काम का नहीं, अनुभव संतुष्टि नहीं होगी, सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा अंदर। फिर कहते रहे अगर इतना कुछ करते कुछ होता नहीं, ठीक से करते नहीं तो होगा क्या। इसलिए ये मेरा की जगह तेरा का भाव आ जाए तो हमारी इस भावना का भाड़ा दुआ के रूप में बहुत जमा होगा, अर्थात निवेश हो सकता है। इससे पुरुषार्थ और सेवा में क्या होगा, इस दुआ से, इस प्रकार की दुआ लेने से हम पुरुषार्थ और सेवा में निर्विघ्न रह के आगे बढ़ते रहेंगे और उससे और जमा का खत्म बढ़ेगा। निर्विघ्न रहना और सेवा में आगे बढ़ते रहना है, पुरुषार्थ को तीव्र करना, इससे भी दुआएं बढ़ती रहेंगी। उससे अच्छा अभी का जो सुख है सत्युग से भी ज्यादा है, इसमें जो सुख मिलता है। एक अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा था, हर संकल्प अगर निमित्त बनकर करेंगे तो निमित्त समझने से नम्रचित स्वतः बन जाएंगे। नम्रचित बनना अर्थात झुकना, जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। तो इस प्रकार से झुकना अर्थात सर्व की दुआई लेना, अब ये बहुत सूक्ष्म बात है, झुकना शब्द ही लोगों को दुनिया का वो आ जाता, हम क्यों भाई वो करें, लेकिन संस्कारों में संकल्पों में झुकना, ये है सबको झुकाना, और ये झुकना है दुआई लेना, अपनी विशेषताओं को पहचानना एवं अन्य की भी विशेषताओं को पहचानना और उसे सेवा में लगाना, ये भी बहुत दुआएं देने और लेने का पात्र बन सकते हैं। इससे भी जैसे बड़ी दादी जी थी, बहुत विशेषता थी, ये भाई ये आत्मा क्या सेवा कर सकती है यज्ञ में, किस प्रकार से सहयोगी बन सकती है, वो जान करके उसे सहयोग लेके उसका भाग्य बना देती, तो उससे उसको भी दुआ मिलती थी बाबा से, दादी बड़ों से, और दादी भी अपना भाग्य बनाती थी। बाबा तो है ही, बाबा कितना खुश होंगे। अभी देखो बाबा को साकार महावाक्य साकार देखा होगा, अभी प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं, वो स्लोगन साथ साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। क्या कौन सा, किसकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए किसकी चोर लूटे, सफल ही उसकी होवे जो साईं के नाम सफल करे। साईं माना कौन सा साईं, तो धन दिए धन ना कूटे, दान का बड़ा महत्व है। कल भी बाबा ने बोला दान करने का शौक होना चाहिए, लेकिन सही समय पर यानी आवश्यकता के समय पर दान करने से पुण्य जमा होता है। मम्मा के पास कुछ भी धन नहीं था, लेकिन उन्होंने कैसे धन की देवी बन गई। वो जो धनवान है उनको ज्ञान देके, अविनाशी ज्ञान धन का दान दे करके, उनसे उनके धन को बाबा की सेवा में सफल करा के अपना भी भाग्य बनाया, दूसरों का उनका भी, तो धन की उसके आयवज में क्या बन गई हो, धन की देवी। अभी हम देखा देखी में यहां भी हम देखते हैं कई लोग लगाते हैं पैसा, फिर बाद में उनको संकल्प आता है हमको इतना नहीं देना चाहिए था। तो सच्चा धनी वह है जो ज्ञान योग तथा दिव्य गुणों से मालामाल और सदा खुशी के खजानों से खुशहाल रहता है, केवल उसे ही जीवन में संतोष होता है। और संतोष का धन जो है सबसे बड़ा धन है, उससे जो संतुष्टि होगी वो बहुत काम करेगा। और संतुष्ट मनुष्य के पास कितने भी करोड़ों रुपए हो फिर भी वो कंगाली अनुभव करेगा अपने, क्योंकि सात पीढ़ी की चिंता रहती है उसको। संतुष्टता अर्थात सर्व प्राप्तियों से भरपूर तृप्त आत्मा, संतुष्टता अर्थात एक मुरली में कहा था दिल और दिमाग आराम में हो, सुख चैन में हो, जरा भी किसी प्रकार का बेचैनी न हो, ऐसी संतुष्ट आत्मा ही दुआएं ले सकती है और दे भी सकती है। जो संतुष्ट रहता है और संतुष्ट करता है, इसके लिए बहुत सारी बातों को इंक्लूडिंग होना पड़ेगा। हाँ मुश्किल नहीं होता है संतुष्ट, तो हाँ बात तो सही है, लेकिन करना पड़ेगा। हमारे सामने बाबा है, दादियां हैं, दीदियां हैं, बड़े हैं, जैसे उन्होंने युक्ति से चले हैं उनको हम सीख सकते हैं उनसे। अभी ऐसे पूर्वज आत्माएं है, जो वानप्रस्थी है, अनुभवी है लौकिक में, उनसे ही दुआ लेना, आशीर्वाद ऐसे ऐसे करते। बड़ी दादी भी ऐसे ऐसे करती थी, बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था हाथों से। तो शांत रह के सिर्फ शांति का दान देते रहते हैं स्वयं को भी और दूसरों को भी। इससे क्या होता है, दादी को देखने के लिए लोग तरसते हैं, उनको मिलके कितना खुश होते हैं। तो ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, दुआएं है ना। ऐसे पूर्वजों की और पुराणों की बैठे बैठे भी सेवा होती है, और कहीं जाएंगे यहां से तो भी सेवा होती है। उनको हर कदमों में पद्मों की कमाई नेचुरल है, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास है, उनको शुरू से करते आए हैं, बहुत निवेश उनका जमा है, क्योंकि इनके वाइब्रेशन ऐसे होते हैं उनके सारा काम हो जाता है उनसे ही। जैसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है ना, उसी से उनका जीवन यापन होता है। ऐसे अभी दादियों का पूर्वजों का हम देखते हैं, इतनी जिम्मेवारी होते भी दादी हल्की है, खुश रहती है, शांत रहती है, भले शरीर की भोगना को उन्होंने सेवा की योजना बना दी, उससे भी क्या भाई। दादी हमेशा बोलती मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं सेवा नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, मैंने शरीर अपने आप को भी नहीं संभाल पाती, उस बात का भी उनको फीलिंग है, जबकि सब कुछ करने के लिए तैयार है। आजकल के बाबा के बच्चे जो नए नए आ रहे हैं, उनको भी बहुत उमंग आता है, जिन्हें कुछ करना है, आगे बढ़ना है या कहे बड़ा बनना है तो कुछ करना पड़ेगा, तो वो भी दिन रात सेवा एवं सौन्नति में लगे रहते हैं, तो उनकी पढ़ाई कमाई चलती रहती है, यानी दुआएं जमा होती रहती है, लेकिन इसके बीच उनकी माया से लड़ाई भी होती होगी जरूर, पर वो दिखाई नहीं देती है। जैसे हमारे पास उदाहरण है प्रैक्टिकली, नाम बताने की जरूरत है, नाम बताने की जरूरत नहीं है ना, सचिन भाई कभी दिखा, कभी उनको माया आती होगी, कोई परिस्थिति आती होगी, कभी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, लगता नहीं है, ऐसे लग रहा है सब बढ़ रहे हैं आगे से धीरे से, बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो कभी वर्णन में आते हैं शकल अकल में, देखो ये है हमारे इंचार्ज है, कभी आता है ऐसे संकल्प में भी, उनको लगता है ये भी माया से मुक्त है वो। बहुत अच्छी बात है, बहुत सोचने की बात है, क्योंकि जितनी पढ़ाई उतनी लड़ाई और उतनी ही कमाई जमा होती है, कमाई माना दुआ है, पर इसमें मेहनत है बहुत, ऐसे नहीं हो। दो तीन दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा था, जो अच्छा समझते हैं वो अच्छा समझाते भी है, और जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वो अच्छी रीति धारणा कराते भी है। तो ये सचिन भाई की विशेषता है, पीछे आके भी आगे जाने का एग्जाम्पल है। तो वही ऊंच पद पाएंगे, अर्थात ऐसों को दुआएं भी अच्छी मना ज्यादा मिलेगी, जैसे किसी को पगार कम या किसी को ज्यादा मिलती है। किस आधार पर? उनकी विशेषता होती है, उनका पोस्ट पोजिशन क्वालिफिकेशन। तो जो ऐसे समझते हैं कम है हम, और जो समझते कम है और बहुत पुरुषार्थ और सेवा ज्यादा करना चाहते, उसमें उलझते हैं, कुछ कमाई नहीं होती फिर, न दुआई ले पाते हैं न दे पाते हैं, उनकी गाड़ी आगे भी नहीं जाती पीछे भी नहीं जाती, फिर वो मूझते हैं वही प्रश्न से हम सबको पूछते रहते हैं। तो इससे क्या खुद का भी समय व्यर्थ जाता है, दूसरों का भी समय व्यर्थ जाता है। तो ऐसों का क्या निवेश हो सकता है, इनकी क्या कमाई? फिर भी ऐसों के लिए कहा जाता है, दान उतना ही करें जो करने के बाद संकल्प न चले। कईयों का देखा देखी में भी दान करते हैं, जैसे उसने पता पड़ा ये बहन जी ने इतना दिया, ये भाई ने इतना दिया, तो हम भी देंगे खुश करने के लिए संगठन में, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है गुप्त दान महादान, इस हाथ से दे दूसरे हाथ को पता न चले, उसका जो बनता है वो ज्यादा बनता है। दूसरा क्या है, तुरंत दान महापुण, आप भी करेंगे, बाबा का तो है सब, हमारा बैंक थोड़ी है, हम बाबा के हैं तो बैंक अकाउंट भी बाबा का ही है, ऐसा अंदर से रसगुल्ले खाते रहते हैं, लेकिन कब सफल करेंगे पता नहीं, वो किसको ले रखा है मालूम नहीं, कब काम आएगा उनके लिए, अंत समय कब आएगा मालूम नहीं। हाँ, फिर कई लोग बोलते हैं बाबा को जब जरूरत पड़े तो साकार बोली में आता है कि बताना बाबा हम देंगे, अरे तेरा क्या जरूरत, बाबा तो मना करते, बाबा को देना भी तो है ना, जो समय पर देता है उसका उस अनुसार उसका महत्व होता है। तो उसका दस गुना, कई लोग है ना एक देते हैं दस बार सुनाते हैं दस लोगों को, तो उसका ओम शांति हो जाता है, उधर ही पूरा हो जाता है। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करेंगे, डोनेशन देंगे, दस लोगों को सुनाएंगे, उनका क्या भाग्य बनेगा, उनका क्या निवेश होगा, कुछ नहीं होगा। पुरुषार्थ भी ऐसे ही करते रहते हैं दिखावा, तो उससे क्या स्थिति बनेगी, उससे क्या अवस्था बनेगी, क्या अनुभव होगा, उससे क्या दुआएं मिलेगी। अभी 15 मार्च 2015 को बाबा ने माइक हटा के सबसे, दादी ने बोला था ये सब बातें छोड़ दो, अभी क्या करो, अब पुरानी बातों को मिटाकर, इन सब पुरानी बात जो भी हुआ अभी तक या नहीं हुआ, पुरानी बातों को मिटा करके एक बाबा के योग से पावरफुल वातावरण बनाओ, अच्छी तरह से साइलेंस का अनुभव करो और योग लगाओ। 10 मिनट बाबा ने दादियों सहित सबको सभा में योग करवाया था, और मुरली में छपाए वो, मुरली में माइक हटवा के बाबा ने बोला था। तो तो सब सोच छोड़, अभी जो सोच जो भी सुना है सुनते हैं रोज, आज की मुरली में भी है, सुन हो गए, थक गए, उनको क्या चाहिए, शांति का अनुभव। तो शांति का अनुभव कैसे होगा, सब सोच छोड़ एक बाबा को याद करो, तो यही दुआ हो जाएगा अपने लिए भी सबके लिए। अभी सीजन में भी अभेक बाप दादा ने कहा था, अपनी चेकिंग अपने आप करो, कैसे भी वायुमंडल हो अपनी बुद्धि एकाग्र हो जाए, इसकी ट्रायल करते रहो, जब ऐसी अवस्था हो तब उसे किस लाइन में लाया जाएगा, अभी इस सीजन के मुरली में तब उसको इस लाइन में ला सकते हैं, योगेश्वर की लाइन में ला सकते हैं। तो सबसे बड़े से बड़ा तीव्र पुरुषार्थ गति उड़ने का यंत्र है दुआएं। किसी को आगे पुरुषार्थ में बढ़ना है, सेवा अच्छी रीति करना है, तो सुबह से शाम तक छोटे कर्मों से लेकर बड़े कर्मों तक दुआएं लेते रहना, ये बहुत बड़ा यंत्र का काम करेगा। बाबा कहते हैं दुआओं का रॉकेट साइंस के रॉकेट से भी श्रेष्ठ है। आज की मुरली में ना साइंस वाले त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते हैं, कितनी भी योजना बनाए खोज करें। दुआएं उसको मिलती है जो ज्यादा संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतुष्ट करता है। हर एक से दुआएं लेते रहना है, और कुछ ना आता हो तो सिर्फ वो क्या करें, जैसे दुआएं देते रहे, शुभ भावना शुभकामना तो रख सकते हैं ना अपने लिए भी। अभी जैसे मेरे को नहीं आता है तो हम पढ़ के तो सुना रही है भी, एक हमारे ऊपर दुआ कर रहे हैं। लिखा तो चिंता हम, तो इससे स्वयं सबसे पहला आपसे मिले ना मिले हमारी दुआ हमको मिल रही है, जिसे कुछ ना आता हो, इसमें दिल की दुआएं से गुप्त प्राप्ति जमा होती रहती है। और ये जमा करने की बैंक खुलने का समय अभी है, बस 6 बजे तक ही अभी, यही है सब संगम पर ही। जो अभी खजाने मिले हैं उसे यूज करो, यूज करो माना कार्य में लगाओ। जो भी पॉइंट सुनते हैं, विशेष सारे दिन में एक तो समय, दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना है। वैसे खजाने तो बहुत है, ये जो 21 पैकेज में से है उसमें सब आ जाते हैं, लेकिन विशेष इन दो खजानों के ऊपर अटेंशन देना है। हर दिन संकल्प, श्रेष्ठ शुभ कितना जमा किया। कई लोग बोलते हैं कि हमने आज सारे दिन का चेक, दुख तो मेरे से किसी को नहीं हुआ, दुख किसी को नहीं दिया, लेकिन बाबा कहते सुख कितनों को दिया, वेस्ट नहीं किया लेकिन वेस्ट कितना किया। क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है, वो तो 7 पीढ़ी का सोचते हैं, हमारे को 21 पीढ़ी का सोचना है, हमारे को कितना ध्यान रखना पड़ेगा। सत्युग में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी और वहां जरूरत भी नहीं निवेश करने की, हाँ वहां का इंटरेस्ट खाएंगे। इस समय का 1 गुना पदम गुना करके देने की बैंक ये है, अभी है। 1 जमा करेंगे तो पदम मिलेगा, लेकिन हिसाब है समय पर, सही समय पर। बाबा कहते हैं अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, अपनी शक्ति की बचत, ये योजना बनाकर बीच बीच में बिंदु रूप की स्थिति बढ़ाओ तो इसी से दुआओं का निवेश बढ़ता रहेगा। तो ये निवेश की अति उत्तम योजना हो सकती है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि एक बार किसी को दुआ देना और दुआ लेने की कला आ गई तो फिर वो जीवन में कई परेशानियों से अपने को भी बचा, खुद भी बचता है, दूसरों को भी उसको आइडिया अनुभव सुना के बचा सकता है। कैसी भी हालत में अपने पुण्य की पूंजी को बढ़ा सकते हैं, ये एक बहुत ही आकर्षक निवेश योजना है संगम में। इसके लिए इस निवेश की पद्धति को थोड़ा बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। उसमें भी कंडीशन होते हैं, भाई इतना किस्ती में इतना जमा करेंगे तो इतना साल में इतना जमा आपका डबल ट्रिपल होके मिलेगा, क्योंकि यहाँ का हिसाब थोड़ा अलग ही है, इसलिए यहाँ बड़ा ही सोच समझ के चलना पड़ता है। अभी हिस्ट्री हाल में अमृतवेली के बाद मैं सोच रहा, ये सारे चित्र देख रहा था, एक एक का फेस देखो कितना अच्छा लगता है, संपन्न है, दिखाई नहीं देता है लेकिन बहुत खुश, कितना फेस अच्छा लगता है। तो दुआ की जमा है ना उनमें, फिर इसमें कई लोग इसमें है ना, इस प्रकार से हम नहीं बन पाते, नहीं कर सकते हैं, तो इस निवेश करने में निराश हो जाते हैं, दिल से कष्ट हो जाते हैं, कहते हैं जो ड्रामा में होगा। इसलिए बाबा कहते हैं एक एक पाई को, यानी एक एक संकल्प को बिना श्रीमत अनुसार खर्च न करें, श्रीमत के अनुसार खर्च करें। संकल्प हमारा एक एक पाई है, एक एक बोल, एक एक कर्म हमारा, इस प्रकार से हम एक एक पाई समझेंगे तो इसी से पुण्य कर्मों की पूंजी जमा होगी और यही वही अंत समय में मनुष्य के काम आती है। आध्यात्मिकता माने इसको कहते हैं आध्यात्मिकता, यही साथ जाएगी और कुछ काम नहीं आने वाला है। यही सर्वश्रेष्ठ दान है, कौन सा? अविनाशी ज्ञान दान। समय बहुत कम है तो इसी से हम बहुत अच्छा अविनाशी, ये हमारे लिए जो दुआ है, 21 जन्म तो क्या 84 जन्म तक काम करती रहेगी। श्राप और बद्दुआ एक ही बात है, जैसे दुआ आशीर्वाद लगभग 19 में सेम ही होगा। हाँ प्रार्थना बताए ना, वो जो ना भगवान के लिए की गई प्रार्थना का नाम है निवेदन विनती। हाँ तो जनरल का जनरल ही होगा, नहीं सही बोला आपने, श्राप थोड़ा बद्दुआ में उच्च हायर गया, हायर बोल सकते, क्योंकि ये भगवान के बाबा कहते हैं मैं शिक्षा दे रहा हूँ। शिक्षा का 2 मीनिंग होता है, पुलिस भी शिक्षा देता है डंडे से, तो अगर कायदे से नहीं चलेंगे तो वो ये शिक्षा, मैंने कायदे से चलना मना शिक्षा पर चलना, ये शिक्षा पर नहीं चले तो वो डंडे की शिक्षा पर चलना पड़ेगा, चलाना ही पड़ेगा सरकार को। तो बाबा कहते मैं किसको श्राप नहीं देता हूँ लेकिन श्रीमत देता हूँ। तो ओम शांति।